आइए देखते हैं कि कुरान पाक में इखलास का हुक्म कहाँ है। चंद आयतों के नंबर नोट कीजिएगा। पहले तो सूरत बैजीना ही, आयत नंबर 5 सूरत बैजीना। वमा उमीरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। फिर इसी तरह सूरत जुमर आयत नंबर 3 नोट कीजिए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खबरदार हो जाओ कि दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए खालिस है। फिर सूरत अलनाम 162 से 163। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया कि मैं इसका हुक्म मानने वालों में से पहला हूँ। फिर इसी तरह सूरत मुल्क की आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियाब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। ये जो अहसन अमल है ना, आगे जाके इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह, तो अहसन अमल भी इखलास ही की एक शक्ल है। फिर इसके बाद अगली आयत देखिएगा, सूरत कहफ की आयत 110, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। बस जो कोई अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो, खुद से पूछिए, है मुझे उम्मीद अपने रब से मिलने की? क्या दिल उदास है अल्लाह से? कब अल्लाह से दिल उदास हुआ? माँ को याद करते हैं, बाप को करते हैं, शौहर को करते हैं, जो दूर होता है उसको याद करते हैं, क्या अल्लाह से दिल उदास है? पहली बात है, वो उदास होने नहीं देता, क्योंकि अम्मा युजीबुल मुस्तर इजादा या इजा साला कई बादी अन्नी फनी करीब। वो तो करीब है, उदास तो बंदा उससे होता है जो दूर हो, लेकिन हाँ हमारी आंखों से छुपा हुआ है। एक ईमान वाले के दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए अल्लाह से मुलाकात की, अगर हो तो क्या करे, फल या मला मलन सालेहन वला युश्रिक बे इबादत रब्बी ही अहदा। तो फिर वो अमल करे सालेह और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न बनाए। यहां देखिए लफ्ज है अमल सालेह, और अगली आयत को भी देख लें तो दोनों का फर्क बताऊंगी। सूरत निसा आयत 125, और दीन के लिहाज से इससे बेहतर कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया जबकि वो नेकी करने वाला हो। क्या पता चला, दो टर्म्स हैं, एक है इस्लाम और एक है एहसान। इस्लाम क्या है? काम को अल्लाह के लिए करना। और एहसान क्या है? सुन्नत के मुताबिक करना। क्या आप कह सकते हैं कि अमल सालेह की दो पहचान, करता बंदा अल्लाह के लिए और तरीका उसका नबी वाला होता है, इसके बगैर बात नहीं बनती। और जो काम अल्लाह के लिए होता है, यानी अखलस और अस्वबक के लफ्ज हैं, फुदैल फजील बिन इयाज हैं, वो कहते हैं कि अहसन अमल क्या होता है? खालिस तरीन अमल। इसमें अस्वब भी होता है और अखलस भी होता है, मुराद यह है कि अल्लाह के हुक्म पे भी होता है और नबी के तरीके पे होता है। फिर इसी तरह सूरत कहफ की आयत 28 नोट कर लें, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलशीशी युरीदूना वजहह। और अपने आप को इन लोगों के साथ रोके रहे जो अपने रब को पहले और पिछले पहर पुकारते हैं और इसका चेहरा चाहते हैं। अल्लाह हम इसकी तौफीक दे। ये पहला पहर और आखिरी पहर क्यों कह दिया? कि उमूमन लोग इस वक्त सो ही रहे होते हैं, यानी नेकियां उस वक्त करो जब लोग सो रहे हों। फिर अगली आयत सूरत रूम की 38 है, फातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वबन सबील ज़ालिका खैरु लिल्लज़ीन युरीदून वजहल्लाह वौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। बस कराबत वाले को इसका हक दो और मिस्कीन को और मुसाफिर को, इन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। और सूरत लैल की आयत नंबर 17 और उससे अगली आयतें, आयत 17 से 21, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى। हजरत अबू बकर की सिफात है, शायद आपको पता हो। अल्लाह ताला कहते हैं, अनकरीब इससे वो परहेजगार दूर रखा जाएगा जो अपना माल इसलिए देता है कि पाक हो जाए, हालांकि इसके यहाँ किसी का कोई एहसान नहीं कि इसका बदला दे, मगर वो तो सिर्फ अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए देता है जो सबसे बुलंद और अनकरीब वो राजी हो जाएगा। حضرت ابو بکر صدیق جب بہت سارے غلام آزاد کراتے تھے نا، تو ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا کہ اتنا پیسہ لگا کے غلام آزاد کراتے ہو، کوئی گھر بھی لے آیا کرو، کچھ کام کروا دو. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے لیے آزاد نہیں کرتا، میں ان کو رب کے لیے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے صدیق کی پھر تعریفیں قرآن میں کرتے ہیں. چلیے اب اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. سوچئے ذہن میں، ہم اخلاص سیکھ رہے ہیں، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جی ہاتھ کھڑے کریں، آپ لوگ بھی شیئر کریں میرے بولنے سے زیادہ. جی
ریاکاری.
شاباش، ریاکاری. تو جب تک اپوزٹ نہیں سمجھیں گے صحیح نہیں سمجھا جائے گا. حالانکہ ریاکاری مفسدات القلوب میں ہے، لیکن ڈاکٹر بھی دوا بتاتے بتاتے کئی دفعہ کئی بیماریوں کی سمٹمز اور ان کی ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں. تو چند آیتیں ریاکاری کے بارے میں بھی نوٹ کر لیتے ہیں. سورت ہود کی آیت 15 اور 16، بلکہ اگر آپ چاہیں تو یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں ہر حوالے کے ساتھ، بعد میں ہوم ورک کے طور پر آپ خود قرآن پاک سے دیکھ کر ان آیتوں کا ترجمہ لکھیں، اور اگر آپ عربی بھی لکھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دیں گے، اور اس دنیا میں ان کو کمی نہ کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں، برباد ہو گیا وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے تھے. دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم. دیکھیں جو عمل نہیں کرتے ان کو تو اتنا غم نہیں ہوگا نا. آپ نے پکایا ہی کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں پکایا، محنت ہی کوئی نہیں کی. پکی ہنڈیا جل جائے یا گر جائے پھر کیا ہوگا؟ بس اس دکھ کو آپ ہزاروں گنا زیادہ کر لیں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو جب آگ میں جلتا دیکھیں گے. لکھ لیں ایک جملہ، جب انسان اپنی نیکیوں کو آگ میں جلتا دیکھے گا تو پچھتائے گا. کس کی نیکیاں آگ میں جلیں گی؟ جس نے دنیا میں خالص نہ کیا خود کو. پھر خالص کرنے کے ساتھ جلنے کا عمل ذہن میں رکھیں. سونے کو بھٹی میں ڈال کے جلاتے ہیں نا تاکہ کھرا اور کھوٹا نکلے، تو اللہ نہ کرے کہ ہماری نیکیوں کو آگ لگے. پھر سورت بنی اسرائیل آیت 18، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاہا مذموما مدحورا. جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، یعنی فوراً ریاکاری کے ذریعے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے، ہم اس کو جلدی دے دیں گے، اس میں جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی، اور اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. اور پھر سورت شورا آیت 20، اس میں بھی یہی مضمون ہے. میں پوری آیت نہیں پڑھتی وقت کو بچانے کے لیے، لیکن جو حصہ اس میں ہے وہ کیا ہے؟ ومن کان یرید و حرست دنیا نوتہ منہا. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیں گے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. امیجن کریں، ابھی ریسنٹلی رمضان کے روزے رکھے ہیں نا آپ نے، اور آپ کے ادھر کے روزے تو بڑے آسان ہیں. لوگ کہتے ہیں 21-20 گھنٹے کا روزہ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ یہاں روزے کا پتہ نہیں چلتا، الا یہ کہ روزہ تو پھر روزہ ہی ہوتا ہے. پاکستان کے روزے سوچیے کتنا ٹیمپریچر تھا، لمبے، گرمی، بجلی نہیں. 29 روزے رکھے کسی نے، اور قیامت کے دن اعلان ہوتا ہے کہ 2015 کے اگست اور جولائی کے روزے اس نے جو رکھے، یا جون اور جولائی کے جو روزے رکھے، وہ ہم نے قبول نہیں کیے. کتنا رونا آئے گا اس دن. اللہ کہتے ہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان نیکیوں کا جو تم نے دنیا میں فائدے کے لیے کی. پھر اس کے بعد سورت الانفال کی آیت 47، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے. وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کو جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا احاطہ کر رہے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ ریاکاری بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. پھر اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ مخلص ہو جاتے ہیں، مخلصین، کاملین، اور ان کے عمل خالص کی مدہ سرائی. قرآن پاک کی ان آیتوں کے صرف حوالے نوٹ کیجئے گا جہاں لوگوں کے اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کی تعریف کی گئی ہے، اور ہر بات کے پیچھے واقعہ جو اس وقت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے سورۃ دہر آیت 9 ہے، उन लोगों की तारीफ है जो गरीबों को, मोहताजों, फकीरों को खाना सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं और जन्नतियों की जुबानी अल्लाह ताला कहलवाते हैं। क्या कहेंगे? इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा। और वो कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह के चेहरे की खातिर तुमको खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। जरा पूछिए, हम भी आज इसलिए खिलाते हैं? एक दावत में या एक शादी में कितने लोग खाने पे आते हैं? 200-300 तो कहीं नहीं गए। और एक बंदे का खाना जो शादियों में मेरे ख्याल में इधर आता है वो 200 करोन से कम तो नहीं होता होगा, और साथ शायद सिटिंग लगा लें तो इससे भी बढ़ जाए। आप कितने लोगों का खाना लाखों करोन लगा कर खिलाते हैं? वजह किनको बुलाओ? जिन्होंने हमें बुलाया था उनको बुलाना है? नहीं, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था, तो वो 1 लाख करोन किधर गया? ठीक है, आपके खाते पड़ गया। लेकिन आप किसी ऐसे को ढूंढ के खिलाएं कि जिसको ना आप जानते ना आपको पता, तो फिर वो होगा अमल जो कल क़यामत के दिन अपनी वैल्यू रखेगा। हज़रत इब्राहिम के बारे में आता है कि खाना नहीं खाते थे उस वक़्त तक जब तक कि कोई उनके साथ नहीं बैठ जाए। एक दिन क्या हुआ कि खाना पकाया हुआ लेकिन उस दिन को मेहमान ही नहीं आया। बाहर खड़े हो गए कि जो शख्स जहाँ से पहले गुजरेगा उसको ले जाऊँगा अपने साथ। और कहते हैं कि जो शख्स उस वक़्त गुजरा वो कोढ़ी था, लेप्रसी का मरीज, स्किन डिजीज्ड। अब लोग तो उससे कराहत करते हैं ना। इन्होंने कहा नहीं, तुम आओ, और उसको साथ बिठा कर खाना खिलाया। आज कितना मुश्किल है नाम, रियाकारी, दिखावे, शोहरत के बावजूद किसी ऐसे को खिलाना, और वही खिलाना जो अपनों को खिलाते हैं या जिसमें हमारा मेयार होता है। तो ये एक अमल था जिसकी अल्लाह ने यहाँ जिक्र कर दिया। फिर इसी तरह सूरत निसा 114, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम, इनकी बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर ही नहीं है सिवाय इस शख्स के जो किसी सदके या नेक काम या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे, और जो भी ये काम अल्लाह की रजा की तलब में करेगा तो हम जल्द ही इसे बहुत बड़ा अजर देंगे। तो क्या पता चला? सिर्फ अल्लाह की खातिर रूठों को मनाना, ये मतलब है इसके अंदर, ये अमल अल्लाह को पसंद है। फिर इसी तरह सूरत शुरा 20, जिसमें बता दिया कि जो आखरत की खेती चाहता है उसका इजाफा करेंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ कोई नेकी इसलिए करता है कि मुझे इसमें से दुनिया का कोई फायदा नहीं चाहिए, वो भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। फिर इसी तरह सूरत आले इमरान 152, अम मैं युरीदु दुनिया व मिनकु मैं युरीदु लाखिरा। सबको पता है ग़ज़वे उहद में चुने हुए लोगों की भी आजमाइश हो गई, मुवाहिद थे, मुखलस करना चाहता था अल्लाह उनको, एक ऐसी आजमाइश में डाल दिया कि माल गनीमत की मोहब्बत में तीरंदाज अपनी जगह छोड़ गए, और आकर जब माल जमा किया पीछे से दुश्मन ने हमला किया। याद है वाक्या? जुबानी याद होने चाहिए ये वाक्या तो उम्मत मुस्लिमा को। तो उस वक्त अल्लाह ने जो आजमाइश डाली थी वो बता दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह पाक करना चाहता है तो किसी मुसीबत में डाल देता है। फिर इसी तरह सूरत अनफाल 68, तुरीद औरदत दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनिया का सामान चाहते हो जबकि अल्लाह तो तुम्हें आखिरत देना चाहता है। और एक हदीस जो आप सब ने कई बार सुनी, हर हदीस की किताब में अमूमन शुरू में होती है, और हजरत उमर फारूक उसके रावी हैं, कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर। इस वक्त भी हम सब एक ही काम कर रहे हैं ना, मेरे सिवा आप सब एक ही काम कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आप सब सुन रहे हैं, लेकिन सबका सुनना उनके अपने अमल के मुताबिक होगा। क्या पता चला कि हर मामले में नीयत बड़ी अहम है, चाहे जिहाद करें, रोजे रखें, नमाजें पढ़ें या कुछ और कर दें। अल्लाह के नबी से लोगों ने पूछा था कि कोई जिहाद के लिए भी जाता है लेकिन साथ ये ख्वाहिश भी होती है कि कोई लोग मेरी तारीफ करें, तो क्या वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह? का नहीं। फिर दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार भी पूछा, तो आपने कहा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह सिर्फ वो है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए काम करे। फिर इसी तरह कुछ अहदीस के हवाले नोट कर लीजिए, इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये बुखारी और मुस्लिम जी दोनों की रिवायत है। फिर इसी तरह से नमाज रोजे के साथ इंसान का जो अमल कबूल होंगे, नीयत अच्छी होगी, ये मुस्नद अहमद की रिवायत थी। आपने फरमाया कि महशर के दिन लोग अपनी नीयतों के बकदर अजर व सवाब लेकर उठेंगे, क्योंकि लोगों को नीयतों के साथ मिलेगा। मैं इसको ऐसे सोचती हूँ जैसे करेंसी की वैल्यू होती है। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई दूसरी करेंसी लेके रखी होती है, चले आप यहाँ क्रोन जमा करते हैं, आप सोचते हैं कि ये क्रोन जब पाकिस्तान में जाके चेंज होगा तो इसकी एक ख़ास वैल्यू है। आपने 15, 16, 17 भी देखी होगी। आप पाकिस्तान गए, बैंक में दिया, क्या पता चला 15, 16 वाला 11, 12 का रह गया। रोएं, चीखें, फिर तड़पें। आप कहेंगे हाय ये मैंने 2 साल पहले जाके क्यों ना कैश करा दिया, लेकिन वो आज के भाव पे बिकेगा ना। बिल्कुल यही बात है, क़यामत के दिन का रेट लगेगा और वो रेट आपकी मेरी नियतों के साथ होगा। फिर इसी तरह आखरत में बंदे की निजात के असबाब में एक सबब इखलास भी है। कोई एक नेकी भी नहीं होगी बंदे के पास, लेकिन सिर्फ इखलास होगा तो उसकी निजात हो जाएगी।